Hare Krishna, Srimad Bhagavatam, the Sanskrit Panchamatthaya, Shloka Sankhya 24 se 30 tak padhne ka prayas karenge. Is adhyatmik jagat mein pravesh karne se pehle guru aur gauranga se kripa ki yachna karte hue mangalacharan karenge, taki hum jo adhyayan kar rahe hain उसका पूरा पूरा लाभ प्राप्त हो सके, जो कि है कृष्ण प्रेम की प्राप्ति.
Ah, sayapa
तीसरा स्कंध अध्याय 4 जिसका शीर्षक है मैत्रेय से विदुर की वार्ता। आज हम श्लोक नंबर 24 से पढ़ेंगे। यहाँ तक हमने पढ़ा कि विदुर जी ने मैत्रेय ऋषि से विभिन्न प्रकार के भगवान के नाम गुण लीलाओं और उसके साथ साथ सृष्टि की रचना के विषय में प्रश्न किए। मैत्रेय ऋषि ने बहुत बहुत विदुर जी का धन्यवाद किया, उनका सराहना की कि आपने कितने सुंदर प्रश्न पूछे हैं जिससे समस्त जीवों का कल्याण होने वाला है। और उसके ऊपर उन्होंने भगवान ने सृष्टि उत्पन्न की उसके पहले क्या था उसके विषय में बताया कि समस्त जीवों के स्वामी भगवान सृष्टि के पूर्व अन्वय रूप में विद्यमान थे। केवल उनकी इच्छा से ही यह सृष्टि संभव होती है और सारी वस्तुएं पुनः उनमें लीन हो जाती है। इस तरह इस परम पुरुष को विभिन्न नामों से उपलक्षित किया जाता है। उसके उपरांत आज हम श्लोक नंबर 24 से आगे सृष्टि रचना में सबसे पहले क्या हुआ, उसके बाद क्या हुआ, वो क्रम से जानेंगे। इन अत्यंत ही पवित्र शब्दों को मेरे साथ साथ उच्चारण करने का प्रयास कीजिए। मैत्रेय मुनि कहते हैं, सर्वा एष तथा दृष्टा न पश्य दृश्यमेकराज मेनेऽस्मिन् तमिवात्मानम् सुप्तशक्तिरसुप्तरे स वा एष तदा दृष्टा न पश्य दृश्यमेकराज मेनेऽस्मत् लेने सन्तमिवात्मानम् सुप्तशक्तिरसुप्तरे। शब्दात् स अर्थात् भगवान् वा अथवा एष ये सभी तदा स उस समय दृष्टा देखने वाला न नहीं देखा उपशत अर्थात देखा दृश्य विराट सृष्टि एक कराट निर्विवाद स्वामी मैंने इस तरह सोचा असंतम अर्थात विद्यमान एवं सदृश आत्मान अर्थात स्वांश सुप्त अर्थात अव्यक्त शक्ति अर्थात भौतिक शक्ति असुप्त अर्थात व्यक्त दृक् अर्थात अंतरंग शक्ति। तो यहाँ पर दो शक्तियों के विचार बता रहे हैं, एक अंतरंग शक्ति और एक बहिरंग शक्ति। उस समय जब ये भौतिक जगत का निर्माण नहीं हुआ उस समय जो ये बहिरंग शक्ति है वो सुषुप्त अवस्था में होती है। मैंने संत विवाहात्मान सुप्त शक्ति सुप्त देख और जो भगवान की अंतरंग शक्ति है वो ही व्यक्त होती है। उसके विषय अनुवाद देखिए, हर वस्तु के निर्विवाद स्वामी भगवान की एकमात्र दृष्टा है। सवा एष तदा दृष्टा, सिर्फ वही जानते हैं, वही दृष्टा है जिन्होंने संपूर्ण सृष्टि को निर्माण स्वयं किया है। उस समय विराट जगत का अस्तित्व नहीं था, अतः अपने स्वांशों तथा विनाशों के बिना ही वे अपने को अपूर्ण अनुभव कर रहे थे। वो लग रहा था मैं अकेला हूँ, तो नापश्य दृश्य नहीं करा कि मैं अकेला अकेला, उनको वो बहुत अपूर्ण अपने आप को अनुभव कर रहे थे क्योंकि कुछ था नहीं। तो क्या हुआ, मैंने संत मेवात्मान अपने को अपूर्ण अनुभव कर रहे थे तब भौतिक शक्ति सुसप्त थी, और जबकि अंतरंग शक्ति व्यक्त थी। भौतिक शक्ति का तो अभी तक निर्माण ही नहीं किया था। श्री प्रभुपाद जी बहुत सुंदरी से समझाएंगे तात्पर्य श्री प्रभुपाद द्वारा। श्री प्रभुपाद की एक बार अनुवाद फिर से देखिए। हर वस्तु के निर्विवाद स्वामी भगवान ही एकमात्र दृष्टा है। उस समय विराट जगत का अस्तित्व ना था, अतः अपने स्वांशों तथा विनाशों के बिना वे अपने को अपूर्ण अनुभव कर रहे थे। तब भौतिक जगत सुसुप्त था जबकि आंतरिक शक्ति व्याप्त थी। श्रील प्रभुपाद जी कहते हैं कि भगवान परम दृष्टा हैं, क्योंकि उनकी चित्वन मात्र से भौतिक शक्ति विराट सृष्टि के लिए गतिशील हुई। जैसे संसार में हमको कोई भी कार्य करने के लिए अपनी कर्मेंद्रियों को यूज करना पड़ता है, लेकिन भगवान केवल दृष्टि करने से, भगवान एक अंग से संपूर्ण कार्य कर सकते हैं। तो केवल भगवान वो दृष्टा है, मतलब वो सृष्टि पर दृष्टिपात करते हैं, और जैसे ही, क्योंकि उनकी चित्वन मात्र से भौतिक शक्ति विराट सृष्टि के लिए गतिशील हो जाती है, और ये जो प्रकृति है भौतिक शक्ति वो सृष्टि करने के लिए गतिशील हो जाती है, अर्थात वो मूवमेंट स्टार्ट कर देती है। उस समय दृष्टा तो था किंतु बहिरंग शक्ति जिस पर भगवान अपनी चित्वन फेरते उपस्थित नहीं थी। अभी चित्वन फेरने के लिए भी तो बहिरंग शक्ति अर्थात प्रकृति की चाहिए ना। उस समय तो क्या बताया कि उस समय कुछ नहीं था, अद्वया, सिर्फ एकाएक भगवान सृष्टि के पूर्व अद्वय रूप में विद्यमान थे, केवल वो ही अकेले थे और कोई नहीं था। तो फिर प्रकृति जब थी ही नहीं तो भगवान किस पर दृष्टिपात करते, संसार का अनसृजन करने के लिए सृष्टि का को गतिशील कैसे करते। तो उन्हें कुछ अधूरा सा लग रहा था। श्री प्रभुपाद जी कहते हैं जिस तरह पति को पत्नी की अनुपस्थिति में अकेलेपन का अनुभव होता है, यह कथा कथित उपमा है। भगवान ने उन भद आत्माओं को जो विस्मृति में सुप्त थी दूसरा अवसर प्रदान करने के लिए विराट सृष्टि का सृजन करना चाह। तो श्रील प्रभुपाद जी वास्तविक कारण बता रहे हैं कि भगवान को लगा कि वो सुषुप्त जीव जो अनादिकाल से भटक रहे हैं उनको एक और चांस मिलना चाहिए। तो चांस तब मिलेगा जब सृष्टि की रचना होगी। तो विराट सृष्टि बद्ध जीवों को भगवत धाम वापस जाने का एक अवसर प्रदान करती है, और यही इसका मुख्य उद्देश्य है। भगवान इतने कृपालु हैं कि ऐसी सृष्टि की अनुपस्थिति में ऐसा अनुभव करते हैं कि जैसे किसी वस्तु की कमी हो, और इस तरह सृष्टि की रचना होती है। अब श्रील प्रभुपाद जी बता रहे भगवान की अनुकंपा, कि भगवान को ऐसा लगता है कि अभी भगवान का चाहते हैं कि सृष्टि की रचना होनी चाहिए। तो कोई ये सोच सकता है कि भगवान को क्या इच्छा होती है? क्या भगवान जो है वो अकेलापन महसूस करते हैं? क्या भगवान को है ना सृष्टि से कोई मतलब है? लेकिन भगवान को कमी किस बात की लगती है, क्योंकि भगवान इतने सुंदर हैं, इतने स्वादु हैं, इतने करुणामयी हैं, सुहृद हैं, कि उनको उन जीवों पर
जो कि सुषुप्त अवस्था में उनके ही अंदर गर्भोदक्षाय विष्णु सॉरी क्षीरोदक्षाय विष्णु के अंदर ही शयन कर रहे होते हैं, उनकी उनका हृदय से उनको लगता है कि इनके ऊपर अनुकंपा होनी चाहिए, तो उनको कमी महसूस होती है कि इनका कैसे मैं उद्धार करूं। तो भगवान इसलिए इस भौतिक जगत का निर्माण करते हैं। और यहाँ आगे श्री प्रभुपाद जी कहते हैं, और इस तरह भौतिक सृष्टि की रचना होती है। यद्यपि अंतरंग शक्ति की सृष्टि व्याप्त थी, भगवान तो थे, अंतरंग शक्ति तो थी, किंतु दूसरी शक्ति सुप्त प्रतीत हो रही थी। भगवान उसे जगाकर गतिशील बनाना चाहते थे। जिस तरह पति अपनी सोई हुई पत्नी को रमण के लिए जगाना चाहता है, यह तो सुप्त शक्ति पर भगवान का अनुग्रह है कि वे उसे रमण के लिए जागृत देखना चाहते हैं। जिस तरह अन्य पत्नियां जागृत हैं, सारी प्रक्रिया सुप्त बद्ध जीवों को आध्यात्मिक चेतना के असली जीवन में लाने की है, जिसे वह उसी तरह पूर्ण बन कर सके जिस तरह की वैकुंठ लोक की नित्य मुक्त आत्माएं हैं। यह श्री प्रभुपाद जी एक बहुत ही सुंदर और साधारण सा उदाहरण दे रहे हैं कि भौतिक प्रकृति क्योंकि सुषुप्त अवस्था में थी, और सुषुप्त अवस्था में क्योंकि क्रिया नहीं हो सकती, इसलिए भगवान उस भौतिक प्रकृति को पति की भांति जगाते हैं कि अब कुछ कार्य होना चाहिए। और क्या कार्य होना चाहिए? जो मेरी संतान है उनका उद्धार होना चाहिए। और उनका उद्धार कैसे होना चाहिए? कि उनको आध्यात्मिक चेतना की असली जीवन में लाने की प्रक्रिया प्रारंभ होनी चाहिए, और वो तभी हो सकती है जबकि जबकि भौतिक सृष्टि का निर्माण हो, क्योंकि वहाँ इस भौतिक जगत में जाकर ही वो कर्म करेंगे, और ऐसा कर्म करेंगे जिसके द्वारा जिससे वे उसी तरह पूर्ण बन सकें जिस तरह के वैकुंठ लोक की नित्य मुक्त आत्माएँ हैं। तो यही एकमात्र, ये पहला नहीं, यही एकमात्र लक्ष्य है भगवान का कि वो इस भौतिक जगत में हम सबको इसलिए भेजते हैं, इस भौतिक जगत की रचना इसलिए करते हैं कि वो हम सबके दुख को नहीं दे सकते, हमारे जन्म मरण के चक्कर को, आदि दैविक आदि भौतिक और आध्यात्मिक कष्टों को नहीं देख सकते। वो चाहते हैं जिस तरह बाकी के 75% जीव आत्माएं मेरे साथ नित्य मुक्त आत्माओं की तरह रहती हैं, हम सब भी वहाँ पर रहें। तो जिस तरह से एग्जामिनेशन होने वाले होते हैं और संतान भी सो रही होती है और माता भी सो रही होती है, तो पति की क्या इच्छा होती है कि माता को पहले जगाते जाओ, अपने बच्चे को भी जगाओ ताकि वो एग्जामिनेशन में पास होकर अपने लक्ष्य को प्राप्त करे। उसी तरह से हम सब सोए होते हैं क्षीरोदक्षाई विष्णु के उदर में, और भौतिक प्रकृति भी सुषुप्त अवस्था में होती है, मगर तो भगवान जाग रहे होते हैं और भगवान जगाते हैं प्रकृति को कि पुनः अब एग्जामिनेशन शुरू होने वाला है और जगाओ अपने बच्चों को ताकि वो इस एग्जाम में पास होकर अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सके। तो चूंकि भगवान सच्चिदानंद विग्रह हैं, अतएव वे आनंदमय रस में अपनी विभिन्न शक्तियों के हर भिन्नांश को भागीदार बनाना चाहते हैं, क्योंकि भगवान की नित्य रासलीला में भगवान के साथ सम्मिलित होना सर्वोच्च जागृत अवस्था है, जो आध्यात्मिक तथा नित्य ज्ञान से परिपूर्ण है। तो यहाँ श्रील प्रभुपाद जी भगवान के हृदय की बात बता रहे हैं कि अतएव वे आनंदमय रस में अपनी विभिन्न शक्तियों के हर भिन्न अंश को भागीदार बनाना चाहते हैं। भगवान के पास कमी नहीं है, 75% जीव आत्माएं हैं भगवान के साथ में रासलीला करने के लिए। भगवान को कमी नहीं है, लेकिन भगवान को हमारी चिंता है। वो हर भिन्नांश को भागीदार बनाना चाहते हैं कि ये क्यों रह जाए, ये क्यों रह जाए, ये क्यों रह जाए, इन सबको मेरे साथ
आध्यात्मिक आनंद की प्राप्ति होनी चाहिए, क्योंकि भगवान की नित्य रासलीला में भगवान के साथ सम्मिलित होना सर्वोच्च जागृत अवस्था है। चैतन्य महाप्रभु बोलते हैं जीव जागो जीव जागो, तो ये कोई नींद से जगाना नहीं है, सर्वोच्च जागृति है कि वास्तविक आनंद को प्राप्त करो। कब तक माया पिशाचनी की गोद में सोकर भौतिक आनंद में ही सुख ढूंढते रहोगे, उस सुख की ओर आओ जो कि तुम्हारा सर्वोच्च अधिकार है, जो कि भगवान के साथ सम्मिलित होना, भगवान की रासलीला में सहयोग देना, उससे बढ़कर और कोई आध्यात्मिक जागृति नहीं है। ये सर्वोच्च जागृत अवस्था है जो आध्यात्मिक आनंद तथा नित्य ज्ञान से परिपूर्ण है। तो भगवान जीव को वह अवसर प्रदान करने के लिए अब सृष्टि की रचना प्रारंभ कर रहे हैं। आगे मैत्रेय ऋषि कहते हैं,
सवा एतस्य समुद्रश्च शक्तिः सदसदात्मिका माया नाम महाभाग ययेदं निर्ममे विभुः सवा एतस्य संद्रष्टुः शक्ति सदसदात्मिकः सवा एतस्य संद्रष्टुः शक्ति सदसदात्मिका माया नाम महाभाग ययेदं निर्ममे विभुः
सवा सा मना वही बहिरंगा शक्ति और वा मतलब अथवा एतस्य यानी भगवान की सौदृष्ट पूर्ण दृष्टि की शक्ति अर्थात शक्ति सदसद आत्मिका यानी कार्य तथा कारण दोनों रूप में। ये जो भगवान की बहिरंगा शक्ति है वही विराट जगत कार्य तथा कारण दोनों रूप में कार्य करते हैं, यही सत और असत बताती है। इस भौतिक जगत में आकर ही जीव जो है वो क्रियाशील होता है और उसका नाम क्या है, माया नाम महाभाग। हे महाभाग विदुर जी, माया मतलब माया, नाम मतलब नाम, महाभाग मतलब हे भाग्यवान विदुर जी। ययदम जिससे, इदम मना यह भौतिक जगत, निर्ममे विभु, निर्ममे यानी निर्मित किया हुआ, विभु यानी सर्व शक्तिमान भगवान ने। अनुवाद,
भगवान दृष्टा है और बहिरंगा शक्ति जो दृष्टिगोचर है विराट जगत में कार्य तथा कारण दोनों रूप में कार्य करती है। हे महाभाग विदुर जी, यह बहिरंगा शक्ति माया कहलाती है और केवल इसी के माध्यम से संपूर्ण भौतिक जगत संभव होता है। भगवान दृष्टा है और बहिरंगा शक्ति जो दृष्टिगोचर है विराट जगत के कार्य तथा कारण दोनों रूप में कार्य करती है। हे महाभाग विदुर, यह बहिरंगा शक्ति माया कहलाती है और केवल इसी के माध्यम से संपूर्ण भौतिक जगत संभव होता है। श्रील प्रभुपाद की जय।
श्रील प्रभुपाद जी कहते हैं, माया कहलाने वाली भौतिक प्रकृति ब्रह्मांडों का भौतिक तथा सक्षम कारण है। जो माया शक्ति है भौतिक प्रकृति वही समस्त ब्रह्मांडों का कारण है, किंतु पृष्ठभूमि में इन सभी कार्यों के लिए भगवान चेतन स्वरूप है। वास्तव में जो चेतना प्रदान करते हैं भौतिक जगत को वो कौन है, भगवान। जिस तरह व्यष्टि शरीर में चेतना ही शरीर की समस्त शक्तियों का स्रोत है, उसी तरह भगवान की परम चेतना भौतिक प्रकृति के समस्त शक्तियों का स्रोत है। इसकी पुष्टि श्रीमद् भगवद गीता 9.10 में इस प्रकार हुई है, मायाध्यक्षेण प्रकृति ही सूयते सचराचरम हेतु नाने व कौन्तेय जगत विपरिवर्तित। तो भगवान जो है वो बताते, मायाध्यक्षेण प्रकृति, ये भौतिक प्रकृति समस्त शक्तियों में अंतिम अधीक्षक के रूप में भगवान के हाथ रहता है। भौतिक शक्ति जो है मयाध्यक्षण, मतलब मेरे अध्यक्षण में होती है। भगवान ये संपूर्ण जगत भौतिक शक्ति के संरक्षण में होता है, लेकिन ये भौतिक शक्ति भगवान के निर्देशन के अनुसार कार्य करती है। मयाध्यक्षण प्रकृति, तो यहाँ श्री प्रभुपाद जी बताते हैं भौतिक प्रकृति समस्त शक्तियों में अंतिम अधीक्षक के रूप में भगवान के हाथ रहता है। इस परम कारण के फलस्वरूप ही भौतिक प्रकृति के सारे कार्य सुनियोजित एवं व्यवस्थित प्रतीत होते हैं और सारी वस्तुएं नियमित रूप से विकसित होती रहती हैं। अब यहाँ श्री प्रभुपाद जी बता रहे कि अगर भौतिक शक्ति को भगवान नियंत्रण ना करते तो भला क्यों हर एक वस्तु नियम से चलती होती। हम देखते हैं भौतिक जगत में हर एक कार्य नियम से होता है। सूर्य प्रकाश, चंद्रमा, ऋतुएं बदलती हैं, मौसम अपने अपने समय पे आते हैं, और देखा जाए तो इस भौतिक जगत की हर एक वस्तु नियमित रूप से चल रही है। तो इसका कारण क्या है कि ये भौतिक जगत को नियंत्रित करने वाला कोई है, और वो कौन है? श्रील प्रभुपाद जी यहाँ पर श्रीमद् भगवद गीता का उदाहरण देते कहते हैं मया दक्षिण प्रकृति, अर्थात भगवान कहते इस प्रकृति का अध्यक्षण मैं करता हूँ। आगे अभी ये भौतिक शक्ति जो है उसके विषय में बताने के बाद सबसे पहले जिस वस्तु का निर्माण होता है वो है नित्य काल। काल मतलब समय। अब ये समय पहले नित्य काल का प्रभाव होगा और उसके बाद जीव कैसे उत्पन्न होंगे वो बताया जाएगा। तो यहाँ पर शाश्वत काल के विषय में आगे बताते हैं मैत्रेय मुनि कहते
काल विद्या तु मायायां गुणमय्यामरुक्षज पूरुषेणात्मभूतेन वीर्यमादत्तवीर्यवान्। काल विद्या तु मायायां गुणमय्यामरुक्षज पूरुषेणात्मभूतेन वीर्यमाधत्तवीर्यवान्। शब्दात्
कालवृत्त्या, काल मतलब शाश्वत काल, वृत्त्या मतलब प्रभाव से। सबसे पहले शाश्वत काल का प्रभाव होता है। तू लेकिन मायायाम यानी बहिरंगा शक्ति में गुणमायाम, गुण यानी प्रकृति के गुणात्मक रूप जो तीन गुण है वो अधोक्षज अर्थात ब्रह्म, पुरुषेणात्मा भूतेना पुरुष अर्थात पुरुष के अवतार द्वारा, आत्मभूतेना जो भगवान का स्वांश है, वीर्यमाधत्त वीर्यवान, वीर्यम अर्थात जीवों का बीज, आधत्त मन संस्थापित किया, वीर्यवान यानी भगवान परम पुरुष भगवान ने। अब स्टार्ट हो रहा है भौतिक प्रकृति का, तो भगवान क्या करते हैं? अनुवाद देखिए।
अपने स्वांश दिव्य पुरुष अवतार के रूप में परम पुरुष प्रकृति के तीन गुणों में बीज संस्थापित करता है और इस तरह नित्य काल के प्रभाव से सारे जीव प्रकट होते हैं। एक बार फिर, अपने स्वांश दिव्य पुरुष अवतार के रूप में परम पुरुष प्रकृति के तीन गुणों में बीज संस्थापित करते हैं और इस तरह नित्य काल के प्रभाव से सारे जीव प्रकट होते हैं।
अब यहाँ श्री प्रभुपाद जी बहुत ही सुंदर रीति से बताएंगे कि किस तरह से पहले तीन गुणों के अंदर भगवान जो है वो दिव्य पुरुष अवतार जो है उसके रूप में पुरुष प्रकृति तीन गुणों के रूप में ये बीज संस्थापित करता है। पहले भगवान बीज देते हैं और उसके बाद नित्य काल का प्रभाव होता है उस पर, और फिर जो सारे जीव भगवान के अंदर सुषुप्त थे उनका वो सारे जीव प्रकट होते हैं। श्रील प्रभुपाद जी कहते हैं किसी भी जीव की संतान पिता द्वारा माता के गर्भ में वीर्य संस्थापित किए जाने पर उत्पन्न होती है और पिता के वीर्य में तैरता जीव माता का स्वरूप धारण करता है। इसी तरह माता रूपी भौतिक प्रकृति अपने भौतिक तत्वों से तब तक किसी जीव को उत्पन्न नहीं कर सकती जब तक स्वयं भगवान उसे जीवों से गर्भित नहीं बनाते। अब यहाँ बहुत ही सरल ना श्रील प्रभुपाद जी उदाहरण देते हैं। उसी तरह से जैसे माता के गर्भ में पिता वीर्य स्थापित करके संतान उत्पत्ति का कारण बनता है, उसी तरह से भौतिक प्रकृति के अंदर भगवान जो है वो दृष्टिपात के द्वारा जीवों को उत्पन्न करने की क्रिया करते हैं। उसी तरह माता रूपी भौतिक प्रकृति अपने भौतिक तत्वों से तब तक जीव को उत्पन्न नहीं कर सकती जब तक स्वयं भगवान उसे जीवों से गर्भस्थ नहीं कर देते। तो जीवों की उत्पत्ति का यही रहस्य है। यह गर्भाधान की क्रिया प्रथम पुरुष अवतार कारण दक्षाय विष्णु द्वारा संपन्न की जाती है। केवल उनके दृष्टिपात से यह सारा काम पूरा हो जाता है। तो भगवान जो है वो केवल दृष्टिपात करने से पृथ्वी को गर्भस्थ करते हैं और जीवों की उत्पन्न होने की क्रिया प्रारंभ होती है। हमें भगवान द्वारा गर्भाधान की विधि को अपनी यौन क्रिया धारणा से के रूप में नहीं समझना चाहिए। सर्वशक्तिमान भगवान केवल अपनी आँखों से भी गर्भाधान कर सकते हैं, इसलिए वे सर्वशक्तिमान कहलाते हैं। उनके दिव्य शरीर का प्रत्येक अंग अन्य अंगों का कार्य कर सकता है। इसकी पुष्टि ब्रह्म संहिता 5.32 में करते हैं। अंगानि यस्य सकलेन्द्रिय वृत्ति मानते, भगवत गीता 14.3 में भी इसी सिद्धांत की पुष्टि हुई है। मम योनिर महत ब्रह्म तस्विन गर्भम ददाम्यहम, जब विराट जगत व्यक्त होता है तो जीवों की आपूर्ति सीधे भगवान से होती है। वे भौतिक प्रकृति की उपज नहीं है। अभी जीव जो है वो भगवान के अतिरिक्त कोई भी उनको नहीं प्रकट कर सकता। ये भौतिक प्रकृति जीवात्मा नहीं बना सकती। इस तरह भौतिक विज्ञान की कोई भी वैज्ञानिक प्रगति कभी कोई जीव उत्पन्न नहीं कर सकती। देखो ये भौतिक जो साइंटिस्ट हैं वो जो मॉडर्न साइंस है कितनी भी उन्नति कर ले, वो कितने बड़े बड़े कंप्यूटर बना ले, कितने ही बड़े बड़े रोबोट बना ले, लेकिन उसके अंदर प्राण नहीं डाल सकती। ये प्राण ये जीव आत्मा केवल भगवान ही प्रकट कर सकते हैं। तो भगवान श्रील प्रभुपाद जी कहते हैं कि भौतिक सृष्टि का यही संपूर्ण रहस्य है। जीवात्माएं पदार्थ से विजातीय होते हैं, अतएव जब तक वे भगवान जैसे आध्यात्मिक जीवन में स्थित नहीं हो जाते वे सुखी नहीं हो सकते। अब क्योंकि भगवान से ही निकले हैं तो भगवान के पास जाकर भगवान से मिलकर ही उनको आनंद प्राप्त होता है। दिग्भ्रमित जीव अपने जीवन की इस आदि स्थिति की विस्मृति के कारण इस भौतिक जगत में सुखी बनने के लिए व्यर्थ ही समय गंवाता है। संपूर्ण वैदिक प्रक्रिया जीव को जीवन के इसी अनिवार्य रूप का स्मरण दिलाने के लिए है। भगवान भद्धात्मा को उसके तथाकथित भोग के लिए भौतिक शरीर प्रदान करते हैं और यदि वह चेतता नहीं है और आध्यात्मिक चेतना में प्रविष्ट नहीं होता है तो भगवान उन्हें उसे पुनः उसी अव्यक्त अवस्था में डाल देते हैं जिसमें वह सृष्टि के प्रारंभ में था। यहाँ पर भगवान को वीर्यवान कहा गया है क्योंकि वे भगवान भौतिक प्रकृति में उन असंख्य जीवों का गर्भदान करते हैं जो अनादिकाल से बद्ध है। अब यहाँ श्रील प्रभुपाद जी एक बहुत ही कठोर सत्य बता रहे हैं कि भगवान जीव को बार बार अवसर प्रदान करते हैं, लेकिन यदि उसको समझ में नहीं आता है कि मेरा जन्म क्यों हुआ है तो फिर भगवान प्रलय कर देते हैं और उस प्रलय के उपरांत ये सारे जीव जो हैं वो पुनः सुषुप्त अवस्था में जैसे प्रकृति के प्रारंभ में थे, तो वैसे ही पुनः उसी अव्यक्त अवस्था में डाल देते हैं जिसमें वह सृष्टि के प्रारंभ में थे। तो इस तरह से प्रक्रिया होती रहती है, फिर भगवान को तरस आ जाता है और पुनः भगवान इस सृष्टि की रचना करते हैं। आगे मैत्रेय मुनि बताते हैं कि
और काल के उपरांत, नित्य काल के प्राकृत्य के उपरांत महत्तत्व उत्पन्न होता है और महत्तत्व में शुद्ध सत्व अर्थात भगवान के अपने ही शरीर से ब्रह्मांड जो अभिव्यक्त होता है उसके बीच किस तरह से बोल जाते हैं उसके विषय में बताते हैं। तत्व भवन महत्तत्व अव्यक्ता काल चोदिता विज्ञानात्मदेहस्थं विश्वं व्यञ्जस्तमोनुदः ततो भवन् महत्तत्त्वम् अव्यक्तात् कालचोदितात् विज्ञानात्मदेहस्थं विश्वं व्यञ्जस्तमोनुदः। शब्दात्
तत्व अर्थात तत्पश्चात उसके बाद अभवत यानी जन्म हुआ, महत्तत्वम यानी महत्तत्व का, अव्यक्तात यानी अव्यक्त से, अव्यक्त यानी तीन गुण, कालचोदित काल के अंतःक्रिया से, विज्ञानात्मा अर्थात विशुद्ध सत्व का, आत्मदेहस्थम यानी भगवान के शारीरिक आत्मा में स्थित, विश्वम यानी संपूर्ण ब्रह्मांड, व्यंजन अर्थात प्रकट हुए, तमः नोदः अर्थात परम प्रकाश। अनुवाद, तत्पश्चात नित्य काल के अंत्यक्रियाओं से प्रभावित पदार्थ का परम सार जो कि महत्तत्व कहलाता है प्रकट हुआ और इस महत्तत्व में शुद्ध सत्व अर्थात भगवान ने अपने शरीर से ब्रह्मांड अभिव्यक्ति के बीज बोए। फिर से सुनिए, नित्यकाल की प्रकट होने के बाद, ठीक है, तत्पश्चात नित्यकाल की अंतःक्रियाओं से प्रभावित पदार्थ का परम सार जो कि महत्तत्व कहलाता है वह प्रकट हुआ और इस महत्तत्व में शुद्ध सत्व अर्थात भगवान के अपने शरीर से ब्रह्मांड अभिव्यक्त के बीज बोए। श्रील प्रभुपाद जी बहुत सुंदर रीति से समझाएंगे तात्पर्य श्रील प्रभुपाद द्वारा। श्रील प्रभुपाद की जय। श्रील प्रभुपाद जी कहते हैं कालक्रम से गर्भित भौतिक शक्ति सर्वप्रथम संपूर्ण भौतिक अव्ययों के रूप में प्रकट हुई। ये भौतिक शक्ति जो है यानी भौतिक प्रकृति सबसे पहले सर्वप्रथम संपूर्ण भौतिक अव्यय यानी महत्तत्व से अवयवों के रूप में प्रकट हुई। फलित होने में हर वस्तु अपना समय लेती है, अतएव कालचोदितात् यानी काल द्वारा प्रभावित शब्द का यहाँ पर प्रयोग हुआ है। महत्तत्व संपूर्ण चेतना है क्योंकि इसका एवं एक अंश हर एक में बुद्धि के रूप में प्रदर्शित होता है। अब महत्तत्व में 24 तत्व हैं, उसमें एक अंश क्या है, बुद्धि है। तो यहाँ श्री प्रभुपाद जी बोलते हैं कि महत्तत्व संपूर्ण चेतना है क्योंकि बुद्धि के द्वारा ही जो आत्मा है उसका लक्षण ही चेतना है। चेतना मतलब शरीर के अंदर जो क्रियाशील होता है, शरीर गतिशील होता है, तो वो क्योंकि उसका एक अंश हर एक में बुद्धि के रूप में प्रदर्शित होता है। महत्तत्व परम पुरुष की परम चेतना से सीधे जुड़ा हुआ है। महातत्व। अभी महातत्व को सही तरह से डिटेल से बताएंगे, लेकिन यहाँ पर ये बता रहे हैं जो महातत्व है, पहले प्राकट्य है, वो परम पुरुष की परम चेतना से सीधा जुड़ा हुआ है, फिर भी यह पदार्थ के रूप में प्रतीत होता है। पदार्थ लगता है, पंचभूत, ये पंच ज्ञान इंद्रियां, पंच कर्म इंद्रियां, इंद्रियों के विषय, मन बुद्धि अहंकार, लगता तो ऐसा है कि भौतिक है, लेकिन ये भगवान से जुड़ा है, फिर भी यह पदार्थ के रूप में प्रतीत होता है। महातत्व अर्थात शुद्ध चेतना का प्रतिबिंब समस्त सृष्टि की अंकुरण स्थली है। यह रजोगुण से थोड़ा समाश्रित शुद्ध सत्व है, अतएव यहीं से गतिशीलता उत्पन्न होती है। अब जैसे महत्त्व उत्पन्न होता है, रजोगुण से थोड़ा समाश्रित शुद्ध तत्व है, अर्थात इसमें क्रिया करने की गतिशीलता की इसके अंदर प्रवृत्ति है, इसी अतएव यहीं से गतिशीलता उत्पन्न होती है। तो यहाँ से हम थोड़ा सा इसको जैसा लिखा है उस तरह से पढ़ेंगे तो आगे आगे हमको ये बहुत आसानी से समझ में आता जाएगा। यहाँ पर ये बताया जा रहा है जो महत्त्व है वो भगवान के ही एक अंश है, क्योंकि उसका एक अंश उसके द्वारा ही जीव को प्रेरणा होती है, उसी के द्वारा जीव जो है वो गतिशील होता है, और वो भले ही भौतिक दिख रहा है लेकिन फिर भी वो पदार्थ के रूप में भी भगवान से सीधा जुड़ा हुआ है। ये भौतिक प्रकृति दिखने में कैसी है कि भगवान से बहुत दूर लगती है ना, ऐसा लगता है कि भगवान एक अलग शय है और ये भौतिक प्रकृति एक अलग वस्तु है, लेकिन ये भौतिक प्रकृति के जो तत्व हैं वो भगवान से अलग नहीं है। इसीलिए तो भगवान ने कहा दैवी ही शगुणमयी मम माया, ये माया मेरी है, हम ये भौतिक प्रकृति, ये भौतिक जगत और महत्त्व ये भगवान से जुड़े हुए हैं, भगवान के ही अंश हैं, भगवान के द्वारा। भगवान ने कहा ना कि ये मेरी शक्तियां हैं, कुछ पराशक्तियां हैं कुछ अपराशक्तियां हैं। भगवान ने कहा कि अपरियम इतस्त्वन्यान प्रकृति विद्धि में परा, मैं माना ये मेरा है सब कुछ, क्योंकि भगवान से पहले तो जैसे हमने पढ़ा कुछ नहीं था, तो ये भौतिक प्रकृति भी भगवान का ही एक अंश स्वरूप है, लेकिन ये रजोगुण से समाश्रित शुद्ध सत्व है। रजोगुण से, रजोगुण मतलब डिजायर, इसके अंदर डिजायर करने की प्रवृत्ति है, इसीलिए हर कोई कार्य करता है ना, इसीलिए यहीं से अतएव यहीं से गतिशीलता उत्पन्न होती है। मतलब जीव कार्य क्यों करता है, क्योंकि उसके अंदर डिजायर है।
गुणकालात्मा भगवत् दृष्टिगोचर आत्मानं व्यकरोदात्मा विश्वस्यास्य शिक्षया सोऽप्यं गुणकालात्मा दृष्टिगोचर आत्मानं व्यकरोदात्मा विश्वस्यास्य शिक्षया शब्दात् सोऽपि अंश गुण काल आत्मा। सो मना इस ये जो महत्त्व की बात हो रही है ना, महत्त्व अपि यानी भी अंश अर्थात पुरुष के सांश भगवान का अंश, गुण अर्थात मुख्यतः तमोगुण, काल अर्थात काल की अधिक अवधि, आत्मा अर्थात पूर्ण चेतना, भगवत दृष्टि गोचर, भगवत यानी भगवान की दृष्टि गोचर यानी दृष्टि की सीमा, आत्मान अर्थात अनेक भिन्न भिन्न रूप में व्यकरोत विभेदित, आत्मा यानी आगार विश्वस्यास्य यानी होने वाले जीवों का
अस्य यानी इस सृष्टि में सृष्टिक्षया यानी मिथ्याहंकार को उत्पन्न करता है। अब क्या महत्त्व की उत्पत्ति हो गई और महत्त्व से क्या होगा, सारे भिन्न भिन्न जीव जो हैं वो भिन्न भिन्न रूपों में प्रकट होने वाले। लेकिन ये जो क्योंकि ये सब भगवान के ही अंश हैं, तो इसलिए यहाँ पर जो मेन बात बताई जा रही है वो क्या है, जब महत्त्व में गुणों का सम्मिलित होता है, ये जो 24 तत्व है उसमें गुण है और मुख्यतः तमोगुण का समावेश होता है। तमोगुण का क्या मतलब, तमोगुण मतलब अज्ञानता। और भौतिक जगत में आने के बाद आखिर कोई जीव सत्वगुण में काम करता है, रजोगुण में करता है या तमोगुण में करता है, लेकिन वो सारे के सारे गुण जो है वो तमोगुण के ही अंतर्गत है। क्योंकि तमोगुण जो है वो यहाँ इस भौतिक जगत का मुख्य गुण है, क्योंकि हर एक जीव जो इस भौतिक जगत में रहता है वो कहीं ना कहीं अपने आप को शरीर मानकर जीता है, तभी तो वो अपने शरीर को भरण पोषण करने के लिए, शरीर से रिलेटेड संबंधियों को खुश रखने के लिए कार्य करता है। भले उसको हजार दफा पता हो कि मैं ये शरीर नहीं हूँ, मैं आत्मा हूँ, लेकिन वो आत्मा के स्तर पर कब सोचता है। तो वास्तव में क्योंकि ये महत्त्व जो है वो मुख्यतः तमोगुणी होता है, इसलिए उसके ऊपर मिथ्या अहंकार होता है। अहंकार क्या, मैंने किया। वास्तव में जीव की कोई स्थिति नहीं है कि वो कोई कार्य कर सके। भगवान कहते हैं मैया वेते निहत्ता पूर्वमेव निमित्त मात्रम भवसव्यसाचि, ये सब कुछ मैं स्वयं करता हूँ और जीव को तो केवल निमित्त बनाता हूँ, लेकिन फिर भी प्रत्येक जीव वो स्वयं को ही करता मान बैठता है। मिथ्या अहंकार होता है ना, मैंने किया। तो महत्त्व में तमोगुण और तमोगुण के कारण मिथ्या अहंकार जन्म लेता है। और जो मिथ्या अहंकार है वही वास्तव में इस भौतिक जगत में बंधन का कारण बनता है, क्योंकि जीव भगवान का अंश होते हुए भी मिथ्या अहंकार के कारण इस जगत में स्वयं को भोक्ता या सुखी बनाने की कोशिश करता है और जीवन से मरण तक इसी क्रिया को करता रहता है कि मैं कैसे सुखी हो जाऊं। तो इस मिथ्या अहंकार के कारण कि मैं सुखी होने वाला, उसके लिए उसको क्योंकि तमोगुण तो है और इसलिए उसको भौतिक कार्य करने पड़ते जिसके कारण वो जन्म मरण के चक्कर में फंसता है। तो अनुवाद देखिए, तत्पश्चात महत्त्व अनेक भिन्न भिन्न भावी जीवों के आगार रूपों में विभेदित हो गया। यह महत्त्व मुख्यतः तमोगुणी होता है और यह मिथ्या अहंकार को जन्म देता है। यह भगवान का स्वांश है जो सर्जनात्मक सिद्धांतों की पूर्ण चेतना तथा फलन काल से युक्त होता है। अब महत्त्व क्या है, महत्त्व से संपूर्ण सृष्टि जो कि अलग अलग जीव है उनके स्वरूपों में प्रकट होती है। जैसे यहाँ पर बताया तत्पश्चात महत्त्व अनेक भिन्न भिन्न भावी जीवों के आधार रूपी रूपों में विभेदित हो गया। यह महत्त्व मुख्यतः तमोगुणी होता है और यह मिथ्या अहंकार को जन्म देता है। यह भगवान का स्वांश है जो सृजनात्मक सिद्धांतों की पूर्ण चेतना तथा फलनाकार से युक्त होता है। श्री प्रभुपाद जी बहुत सुंदर रीति से समझाएंगे तात्पर्य श्रीला प्रभुपाद द्वारा। श्री प्रभुपाद की जय।
श्रील प्रभुपाद जी कहते हैं महत्त्व शुद्ध आत्मा एवं भौतिक जगत के बीच का माध्यम है। मतलब भौतिक जगत और आत्मा के लिए एक पुल की तरह है, माध्यम है महत्त्व। यह पदार्थ तथा आत्मा के संधि स्थल है जहाँ से जीव का मिथ्या अहंकार उत्पन्न होता है, यानी यहाँ से जैसे ही जीव आत्मा महातत्व के साथ मिलन करती है तो फिर मिथ्या अहंकार शुरू होता है। सारे जीव भगवान के भिन्नांश हैं। मिथ्या अहंकार के दबाव में आकर बद आत्माएं पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के भिन्नांश होते हुए भी भौतिक प्रकृति की भोक्ता होने का दावा करती हैं। तो जब महातत्व से जीव मिलता है, यानी बहिरंगा शक्ति जब उसके पर आक्रमित होती है, तो तमोगुण का प्रभाव होता है और उसके कारण बद आत्माएं पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के विनाश होते हुए भी, हम सब भगवान के भिन्न अंश हैं, कभी भी नहीं दूर हो सकते, कभी भी दूर होकर खुश भी नहीं हो सकते, लेकिन प्रॉब्लम क्या हो जाती है, महातत्व के साथ उसका मिलन हो जाता है और भौतिक प्रकृति की भोक्ता होने का दावा कर बैठते हैं। यह मिथ्या अहंकार भौतिक जगत की बंधक शक्ति है, यानी इसी से बंधन प्राप्त, जन्म मृत्यु का बंधन होता है। भगवान मोहग्रस्त बद्धात्माओं को इस मिथ्या अहंकार से मुक्त होने के लिए बारंबार अवसर प्रदान करते हैं। इसी के कारण भौतिक सृष्टि कालांतरों पर होती रहती है। जब बद्धात्माओं को अपने मिथ्या अहंकार के कार्यों को सुधारने की सारी सुविधाएं प्रदान करते हैं, किंतु वे भगवान के भिन्नांश होने की उनकी यत्किंचित स्वतंत्रता में विवधान नहीं डालते। तो यहाँ श्रील प्रभुपाद जी बता रहे हैं कि भगवान उनको बार बार अवसर देते हैं कि आप जाइए, भगवान की भक्ति कीजिए, संसार में जाकर और भगवान को प्राप्त कर लीजिए। तो बार बार अवसर तो प्रदान करते हैं, परंतु वे बद्धात्माओं को अपने मिथ्या अहंकार के कार्यों को सुधारने की सारी सुविधाएं तो प्रदान करते हैं, किंतु वे भगवान के भिन्नांश होने के कारण उनकी जो स्वतंत्रता है कि आप अगर आए हो भौतिक जगत में तो आपको अपनी इच्छा से कार्य करना है, यद इच्छा से तथाकुल, तो उनकी स्वतंत्रता उनसे नहीं छीनते, उसमें कोई व्यवधान नहीं डालते। वो भले ही अवसर प्रदान किया भगवान ने हम सबको कि हम भगवान की सेवा करें, परंतु यदि हम नहीं करते तो बाय फोर्स भगवान किसी से अपनी सेवा नहीं करवाते। तो यहाँ पर ये बताया थे कि महातत्व जो है उसी के कारण महातत्व अनेक विभिन्न भिन्न भिन्न भावी जीवों के आकार रूप में विभेदित होता है, यानी महातत्व के द्वारा सारे जीवों की उत्पत्ति होती है अलग अलग स्वरूपों में, अलग अलग योनियों में। और ये महातत्व क्योंकि तमोगुणी है इसलिए मिथ्या अहंकार का जन्म होता है, जिसके कारण जीव बंधन में बंधता है। और उसके उपरांत क्या होता है, यहाँ पर मैत्रेय ऋषि बहुत ही सुंदर रीति समझा रहे हैं।
महतत्वात् विकुर्वाणात् अहं तत्त्वव्यजायत कार्यकारणकर्त्रात्मा भूतेन्द्रय मनोमयः वैकारिकस्तेजसश्च तामसः चेत्यहं त्रिधा महतत्वात् विकुर्वाणात् अहं तत्त्वं व्यजायत कार्यकारणकर्तात्मा भूतेन्द्रय मनोमयः वैकारिकस्तेजसश्च तामसः चेत्यहं त्रिधा। शब्दात्
महतत्व, महतत्वात् यानी जो महतत्व है उससे क्या होता है, विकुर्णात्, महतत्वात् यानी महत यानी महान, तत्वात् अर्थात कारण स्वरूप सत्य से, विकुर्णात् मतलब रूपांतरित वो हो जाता है, रूपांतरित। और उसके बाद क्या होता है, महतत्व से अहम तत्वम, अहम यानी मिथ्याहंकार जो पिछले श्लोक में हमने पढ़ा, और तत्वम यानी भौतिक सत्य, और व्यजायता प्रकट हुआ। उसके बाद अहंकार से क्या हुआ, कार्य कारण कर्तात्मा। जब कोई अहंकार यानी मैं, तो उससे तीन चीज़ें निकलती हैं अहंकार से, क्या, कार्य यानी कोई कार्य होगा मैं करूँगा तो कुछ होगा ना, कोई काम होगा, जैसे मैंने किया तो कोई काम होगा वो किया, और कारण होगा कि मैंने ये कार्य क्यों किया, और कर्तृत्व यानी कर्ता कि मैं तीन चीज़ें होंगी मिथ्या अहंकार से, एक करने वाला, एक कार्य और एक कार्य का कारण, कार्य कारण कर्तात्मा, और उसके बाद भूतेंद्रिय, भूत यानी भौतिक अव्यय, भूत जो भौतिक जगत के पंच महाभूत हैं, इंद्रिय अर्थात इंद्रिया, ज्ञान इंद्रियाँ, और उसके साथ मनमय अर्थात मानसिक धरातल पर मंडलाता, वो फिर जो उसका कार्य होगा वो मानसिक धरातल पे होगा। वैकारिक, अभी देखो वो क्यों होगा मनोमय, क्योंकि उसके अंदर गुण होंगे, वैकारिक यानी सत्वगुण, तेजस अर्थात रजोगुण, तामस अर्थात तमोगुण, च इति, इति मतलब इस प्रकार, अहम त्रिधा, अहम मतलब मिथ्या अहंकार, तीन प्रकार में विभाजित हो जाता है या प्रदर्शित होता है। अनुवाद देखिए,
महतत्व या महान कारण स्वरूप सत्य मिथ्या अहंकार में परिणत हो जाता है, जो तीन अवस्थाओं में कारण, कार्य तथा कर्ता के रूप में प्रकट होता है। ऐसे सारे कार्य मानसिक धरातल पर होते हैं और वे भौतिक तत्वों, स्थूल इंद्रियों तथा मानसिक चिंतन पर आधारित होते हैं। मिथ्या अहंकार तीन विभिन्न गुणों, सत्व रजो तथा तमोगुण में प्रदर्शित होता है। एक बार फिर सुनिए, महतत्व या महान कारण स्वरूप सत्य मिथ्या अहंकार में परिणत होता है, जो तीन अवस्थाओं में कारण, कार्य तथा कर्ता के रूप में प्रकट करता है। ऐसे सारे कार्य मानसिक धरातल पर होते हैं और वे भौतिक तत्वों, स्थूल इंद्रियों तथा मानसिक चिंतन पर आधारित होते हैं। मिथ्या अहंकार तीन विभिन्न गुणों, सत्व रजो तथा तमो में प्रदर्शित होता है।
श्रील प्रभुपाद जी कहते हैं, शुद्ध जीव आत्मा अपने आदि आध्यात्मिक अस्तित्व में भगवान के नित्य दास के रूप में अपनी स्वाभाविक स्थिति से पूर्णतया सचेत रहता। अगर शुद्ध जीव आत्मा भौतिक जगत से उसका सम्मेलन नहीं होता है, अगर वो पूर्णतया वास्तविक अपनी रियल स्थिति में होती है, तो पूर्णतया सचेत होती है कि मैं भगवान का दास हूँ। सारी आत्माएं जो ऐसी शुद्ध चेतनाओं में स्थित हैं वे मुक्त होती है। चेतना खाली प्योर हो जाए कि मैं भगवान का दास हूँ और मुझे भगवान की सेवा करनी है, बस इतना ही, इतनी ही दूरी है भगवान से। जब तक जीव, हम लोग इस भौतिक जगत में क्यों हुए जानते हैं, क्योंकि हम इस चेतना, ये जो कृष्ण कॉन्शियसनेस है, उससे विमुख हैं। हम भगवान का दास नहीं बनते, गौदास बनते हैं, इंद्रियों का दास बनते हैं और भौतिक जगत में भोक्ता बनना चाहते हैं, इसीलिए भौतिक जगत में। लेकिन शुद्ध स्थिति में क्या है, हम सब भगवान के दास हैं और जीव आत्मा इस बात से पूर्णतया सचेत है। सारी आत्माएं जो शुद्ध चेतना में स्थित हैं वे मुक्त होती हैं, अतएव वे आध्यात्मिक आकाश में विभिन्न वैकुंठ लोकों में आनंद तथा ज्ञान में नित्य निवास करती हैं। अब सारी आत्माएं जो शुद्ध हो गई हैं, जिनको अपनी कॉन्शियसनेस यानी कृष्ण कॉन्शियसनेस के विषय में पता है, तो वो तो भौतिक जगत में नहीं है, वो कहाँ है, विभिन्न वैकुंठ लोकों में आनंद तथा ज्ञान में नित्य निवास करती है। जब भौतिक सृष्टि प्रकट होती है तो यह उनके निमित्त नहीं होती है, वो जो आत्माएं जो भगवान के दासत्व को स्वीकार करती है वो नहीं आती हैं। नित्य मुक्त आत्माएं नित्य मुक्त कहलाती हैं, जिनका भौतिक सृष्टि से कोई वास्ता नहीं रहता। भौतिक सृष्टि उन विद्रोही आत्माओं के निमित्त है जो भगवान की अधीनता स्वीकार करने को तैयार नहीं होती। हम सब है ना विद्रोह करते भगवान से, नहीं भाई हम आपकी सेवा नहीं करेंगे, हम स्वयं भोग करेंगे, खाली आप क्यों भोग करो। तो उसके लिए भगवान जो कहते हैं भाई हमारी मेरे अगर आपको अंतरंग शक्ति की संरक्षण में आना होगा, यदि वैकुंठ लोक में आना होगा, फिर तो आपको मेरी सेवा करनी पड़ेगी। तो आप नहीं करना चाहते हो तो ही उन विद्रोही या शब्द देखो श्रीला प्रभुपाद जी ने यहाँ पर भौतिक सृष्टि में जितने भी जीव हैं उनके लिए बताया। भौतिक सृष्टि उन विद्रोही आत्माओं के निमित्त है जो भगवान की अधीनता स्वीकार करने को तैयार नहीं होती। मिथ्या स्वामित्व की यह भावना मिथ्या अहंकार कहलाती है। ये मिथ्या अहंकार ही है जो मैं और मेरा, यानी भगवान का, मैं भगवान का हूँ, ये वास्तविक अधिकार अहंकार है, लेकिन ये जगत मेरा है, मैं इसका स्वामी हूँ या भोगता हूँ, तो ये मिथ्या अहंकार है। यह प्रकृति के तीन गुणों में व्यक्त होती है और यह केवल मानसिक चिंतन में विद्यमान होती है। जो लोग सत्वगुणी होते हैं वे प्रत्येक व्यक्ति को ईश्वर समझते हैं और इस तरह वे उन शुद्ध भक्तों का परिहास करते हैं जो भगवान की दिव्य प्रेमा भक्ति में लगे रहने का प्रयास करते हैं। आप सत्वगुणी भी क्या करते हैं, प्रत्येक जीव को भगवान समझते हैं कि ये सब भगवान है, पवित्र हो जाएंगे, भगवान में लीन हो जाएंगे, लेकिन जो भगवान की दिव्य प्रेमा भक्ति करते हैं उनको बोलते हैं ये तो पागल है, समझते नहीं है, वो खाली पत्थर में भगवान देखते हैं, प्रत्येक जीव में नहीं देखते। और जो रजोगुणी और जो लोग रजोगुण के कारण गर्वित रहते हैं वे प्रकृति पर अनेक प्रकार से प्रभुत्व जताने का प्रयास करते हैं। उनमें से कुछ लोग उपकारी कार्यों में लगे रहते हैं, मानो वे अपनी मानसिक चिंतनशील योजनाओं के द्वारा अन्यों का कल्याण करने के लिए नियुक्त एजेंट हों। ऐसे लोग लौकिक उपकार के आदर्श नियमों को स्वीकार करते हैं, किंतु उनकी योजनाएं मिथ्या अहंकार के आधार पर बनती हैं। यह मिथ्या अहंकार भगवान से एकाकार होने की सीमा तक विस्तार करता है। अहंकारी भद आत्माओं की अंतिम श्रेणी जो तमोगुणी होती है, अभी देखो सत्वगुणी क्या करते हैं, हर किसी को भगवान मानते हैं, और रजोगुणी क्या करते हैं, वो आनंद प्राप्त करना चाहते हैं और कभी कभी वो सोशल वर्कर बन जाते हैं और क्या सोचते हैं कि हम दूसरों का कल्याण करेंगे और ऐसी योजनाएं करते हैं कि दूसरों जैसे यहाँ श्रील प्रभुपाद जी बोलते हैं योजनाओं के द्वारा अन्यों का कल्याण करने के एजेंट नियुक्त हों, यानी कार्य ऐसे करते हैं, मानसिक चिंतन होता है उनका। और ऐसे लोग लौकिक उपकार के आदर्श नियमों को स्वीकार करते हैं कि दूसरों को हमें आदर्श नियम है उनके रजोगुणों के कि दूसरों का कल्याण करना चाहिए, किंतु उनकी योजनाएं मिथ्या अहंकार के आधार पर बनी होती है। जीव भला किसी का क्या कल्याण करता है, जीव यदि कोई किसी के लिए कुछ कर सकता है तो वो इतना ही कर सकता है कि जीव को, दूसरे जीव को भगवान के चरणों तक पहुंचा दे बस, और इसके अलावा कोई कल्याण हो नहीं सकता। आपके भाग्य में जितना सुख मिला लिखा होगा भौतिक जगत में उतना ही सुख मिलेगा, चाहे आप कितना ही प्रयास क्यों ना कर दो दूसरों को सुख देने का, लेकिन उसको उतना ही मिलेगा जितना कि उसके भाग्य का होगा। आपके कारण किसी को कुछ नहीं मिलने वाला, तो यदि आप किसी का कल्याण करना ही चाहते हो तो इतना ही है कि जीव को भगवान के चरणों तक पहुंचा दो, जो भगवान जीव के समस्त पापों को नष्ट करके अपने उसको पापों को नष्ट कर, जब नष्ट हो जाते हैं तो ही जीव को सुख प्राप्त हो सकता। तो एक ही तरीका है जीव का कल्याण करने का। तो यहाँ आगे श्रील प्रभुपाद जी कहते हैं अहंकारी बदात्माओं की अंतिम श्रेणी जो आखिरी है वो क्या है, जो तमोगुणी होती है, स्थूल शरीर के साथ आत्मा की पहचान करने के कारण दिग्भ्रमित होते हैं। तमोगुणी है बिल्कुल, उनको पता ही नहीं है क्या शरीर है क्या आत्मा है, और उनको पता ही नहीं है कि क्या करना है। इस तरह उनके सारे कार्यकलाप केवल शरीर के चारों ओर केंद्रित होते हैं, ये सोचते ही नहीं है बुरा क्या है अच्छा क्या है, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, बस शरीर के ही चारों ओर केंद्रित कार्य करते हैं। इन सारे व्यक्तियों को मिथ्या अहंकारवादी विचारों से खिलवाड़ करने का अवसर प्रदान किया जाता है। किंतु साथ ही भगवान इतने दयालु हैं कि वे उन्हें गीता तथा भागवतम जैसे शास्त्रों की सहायता लेने का अवसर प्रदान करते हैं, जिससे वे कृष्ण विज्ञान को समझ सकें और अपने जीवन सफल बना सकें। इसलिए संपूर्ण भौतिक सृष्टि उन मिथ्या अहंकारवादी जीवों के लिए होती है जो प्रकृति के गुणों के अधीन विभिन्न मोहों के अंतर्गत मानसिक धरातल पर मंडराते रहते हैं। तो यहाँ श्रील प्रभुपाद जी कहते हैं कि सारे जीवों को उनके गुणों के अवसर ये अवसर प्रदान किया जाता है कि वो जैसा चाहते वैसा कार्य करें, परंतु साथ साथ में भगवान की कृपा है, ये भगवान की दयालुता है, क्योंकि भगवान माता हैं और वो प्रत्येक जीव का कल्याण चाहते हैं। इसलिए भगवान इस भौतिक जगत में श्रीमद् भगवत गीता तथा श्रीमद् भागवत जैसे शास्त्रों को भेजते हैं ताकि इनकी सहायता से लोगों को ये अवसर प्राप्त हो सके जिससे वे भगवान को समझ सकें। और क्योंकि जीव तब तक दुखी रहेगा जब तक भगवान को नहीं समझेगा, इसलिए बार बार भगवान गुरु भेजते हैं, शुद्ध भक्तों को भेजते हैं। ये भौतिक जगत सिर्फ और सिर्फ विद्रोही व्यक्तियों के लिए ही तैयार किया गया है, परंतु यहाँ पर जो शुद्ध वैष्णव हैं वो सिर्फ और सिर्फ हमारा कल्याण करने के लिए भेजे जाते हैं, क्योंकि कृष्ण चाहते हैं कि हम सब भी जन्म मरण के चक्कर से छूट जाएं। और ये तभी संभव है जब शुद्ध वैष्णव से भगवान के इन आदेशों का श्रवण करेंगे और उसी से कृष्ण विज्ञान को हम समझ सकेंगे और इसी से हमारा जीवन सफल होगा। इसी श्री प्रभुपाद जी कहते हैं कि उन मिथ्या अहंकारवादी जीवों जो ये भौतिक सृष्टि उनके लिए होती है जो प्रकृति के गुणों के अधीन विभिन्न मोहों के अंतर्गत मानसिक धरातल पर मंडलाते हैं, होती तो उनके लिए है लेकिन इनको भी इस भौतिक जगत में जीव भगवान केवल तड़पने के लिए नहीं भेज देते, केवल बिखरने के लिए या मानसिक धरातल पर मंडराने के लिए नहीं छोड़ देते। भगवान अपनी वात्सल्यता, अपनी करुणा और कृपा के द्वारा सदैव ये ही प्रयास करते हैं कि ये जीव जो मुझसे विमुख होकर बारंबार कष्ट भोग रहा है वो मुझे प्राप्त कर ले। और उस तरह से महत्त्व से क्या होता है, मिथ्या अहंकार, और मिथ्या अहंकार से तीन चीज़ें उत्पन्न होती हैं, कार्य, कारण और कर्ता, और उसके उपरांत गुण जो हैं वो उन पर प्रभावित हो जाते हैं। और उसके बाद क्या होता है वो सब हम कल पढ़ेंगे। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। कृपया मेरे लिए प्रार्थना अवश्य कीजिएगा कि मैं अपनी सेवा और साधना को अच्छे से कर सकूँ। हरे कृष्ण।